मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा सादर नमस्कार। फ्रेंड्स, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड्स से हम लोग डिफरेंट चैनल्स ऑफ एनर्जी पर बात कर रहे हैं कि एनर्जी के कौन कौन से चैनल्स होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फिलहाल मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के अंदर ये जो चारों तरह की एनर्जीज हैं, इनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ पैदा कर सकूं और ये किस तरीके से काम करते हैं इसकी जानकारी दे सकूं। और इसके बाद स्वाभाविक है कि आपकी इच्छा भी होगी हम इस इशू पर बात करेंगे कि फिर हम अपने इन चारों चैनल्स का इस्तेमाल किस तरीके से करें, किस तरीके से इन्हें आगे बढ़ाएं और किस तरीके से इनका उपयोग करके हम अपने जिंदगी को बेहतर बना सकें और बेहतर सफलताएं हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में मैंने फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी के बारे में काफ़ी डिटेल में बातें की हैं और मुझे विश्वास है कि उसको सुनने के बाद क्या होती है फिजिकल एनर्जी और क्या होती है मेंटल एनर्जी और कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किस तरह से दोनों के बीच में एक जबरदस्त द्वंद्व चलता है। कभी ये कमजोर पड़ता है तो वो मजबूत होकर के पहली कमजोरी को दूर करता है और कभी वो कमजोर पड़ता है तो पहला मजबूत होकर के उसको दूर करने की कोशिश करता है और इस तरीके से दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहारा देते हुए चलते हैं। जो जीवन में जो फर्क होता है मित्रों, वो केवल इसी बात का होता है कि कौन किस तरीके से अपनी इन एनर्जीज का किस अनुपात में इस्तेमाल कर रहा है। इसके बारे में मैं आगे चल करके डेफिनेटली आपसे बातें करूंगा, लेकिन एक राय मैं आपकी जरूर जानना चाहूंगा, आप सबकी जानना चाहूंगा और वो ये कि सच पूछे तो जब मैंने इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत की थी और उसके लिए जब मैंने सब्जेक्ट चुने थे कि मुझे किन किन इश्यूज पर बात करना था, तो इसको लेकर के खासकर कि अपनी क्षमताओं को हम कैसे पहचाने, सच पूछिए तो हम लोग अभी उसी इशू पर बात कर रहे हैं, उसी के अंदर ये एनर्जी की चारों बातें डिस्कस हो रही हैं। तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतने एपिसोड में आगे जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर लगा कि नहीं, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, केवल कैरियर के लिए ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए, तो इस पर हमें थोड़ी सी डिटेल में बात करनी चाहिए और इसीलिए डिटेल में जाते जाते हम इस एपिसोड तक पहुंच गए हैं। तो मैं आपकी जो राय जानना चाह रहा हूं दोस्तों, वह ये कि आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाह रहे हैं या इसको जल्दी से खत्म करके हम दूसरे इश्यूज पर बात करना शुरू कर दें, प्लीज इसके बारे में आप लोग मुझे बताएं ताकि फिर मैं उसी आधार पर अपने आगे के एपिसोड्स के बारे में डिसीजंस ले सकूं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं दो उन एनर्जीज के चैनल की जो अभी बचे हुए हैं, जिसमें एक है इमोशनल एनर्जी और दूसरा है स्पिरिचुअल एनर्जी। इसको हम थोड़े से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छे तरीके से इसलिए मित्रों कि एक लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है और ये साइंस का भी एक तरीके से चरित्र है, साइंस भी इसको प्रूफ करता है। एक सिंपल सी चीज है, आप इसको समझ लीजिए कि जो चीज जितनी स्थूल होगी, जितनी विशाल होगी, देखने में जितनी विशाल होगी, सच पूछे तो उसकी जो अंतर्निहित शक्ति होती है वो उतनी कम होती है और जैसे जैसे वो सूक्ष्म होती चली जाती है, जितनी वो छोटी होती चली जाएगी उसकी शक्ति उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। मजेदार बात यह है कि उसका आकार छोटा हो रहा है और इतना छोटा हो सकता है कि वह हमें दिखाई ही ना दे, लेकिन वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है। खासकर जो एटम बम वगैरह है, अब एटम क्या है, बहुत छोटी छोटा कण तो है ही है पदार्थ का, लेकिन उसमें कितनी शक्ति होती है, सबसे अधिक शक्ति होती है। यानी कि अगर हम इसी बात को थोड़ी सी पारिभाषिक शब्दावली में कहें, और मैं चाहता हूं कि इस तरह की शब्दावलियों में भी आपसे मैं बात करूं ताकि भाषा पर भी आपकी पकड़ हो, आप उसको और गहराई में और अच्छे तरीके से समझ सकें। और मित्रों, जब दार्शनिकता की बात होती है या फिलोसफिकल लेवल पर पहुंचते हैं तो ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना भी पड़ता है। कहने का अर्थ ये कि पारिभाषिक शब्दावली में मैं अगर रखना चाहूं तो जैसे जैसे हम मूर्त से अमूर्त की ओर चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो चीजें शक्तिशाली होती चली जाती हैं और प्रभावशाली भी होती चली जाती हैं। जैसे कला के आप अलग अलग रूपों को देख लीजिए, कला के हमारे सामने इतने रूप हैं। जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यह भी एक स्थापत्य कला है, जो आप मूर्ति देख रहे हैं वह मूर्ति कला है। स्थापत्य कला, एक बिल्डिंग देख रहे हैं उसका आकार बहुत बड़ा है, उसका एक प्रभाव है, लेकिन उसी बड़े से बिल्डिंग के दीवार पर अगर कोई छोटी सी मूर्ति बनी हुई है तो यह भी पत्थर में ही उकेरे गए दृश्य हैं, लेकिन ये उससे थोड़ी सी अधिक प्रभावशाली हो जाएगी, आपको ज्यादा आनंद देगी और आपको ज्यादा आश्चर्य में भी डालेगी, आप उससे ज्यादा प्रभावित होंगे। बिल्डिंग से शायद उतने अधिक प्रभावित नहीं होंगे जितने कि आप इस मूर्ति से प्रभावित होंगे। ये मूर्ति कला है, तो उसका थोड़ा सा छोटा रूप हुआ, इसका प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद चलिए हम साहित्य पर आ जाते हैं। साहित्य है, एक किताब के रूप में आपके सामने रखी हुई है। अब अगर उसी साहित्य में इस बिल्डिंग और इस चित्र का वर्णन किया जाए, वो जो मूर्ति है उसका वर्णन किया जाए, तो आप देखेंगे कि यही साहित्य ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। क्यों प्रभावशाली हो जाएगा? क्योंकि इसमें आपके इमेजिनेशन को मौका मिल जाएगा, आप अपनी तरफ से भी सोच सकेंगे कुछ। जब एक तो राइटर ने अपनी तरफ से आपको कोई चीज दे दी है, वो आपके सामने मौजूद ही है, दूसरा इसमें आपने भी कंट्रीब्यूट किया है। इसलिए मैं ये मानता हूं दोस्तों कि जो पाठक होता है, जो रीडर होता है, वो बेसिकली सिर्फ रीडर ही नहीं होता, वो कहीं ना कहीं राइटर भी होता है, वो क्रिएटर भी होता है, क्योंकि पढ़ने के दौरान वो अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ लगातार रचता रहता है। क्या ऐसा नहीं है? सोच के देखिए, आप एक कहानी पढ़ रहे हैं, राइटर ने लिखा है, आप उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में सिर्फ वही चीजें आ रही हैं जो राइटर ने लिखी हैं? नहीं, आप भी अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से उसमें कुछ लिख रहे हैं। जब आप फिल्म देखते हैं तो क्या होता है? फिल्म की कहानी है, फिल्म के दृश्य हैं, सब कुछ आपके सामने मौजूद है, लेकिन आपके मन में भी एक लेखक जीवित होकर के कहीं ना कहीं कलम उठा करके अपनी लेखनी चलानी शुरू कर देता है। वह कुछ ना कुछ लिखता है, रचता है, जो आपके अपने दिमाग में मौजूद है, जो आपकी अपनी जिंदगी में हुआ है, या जो आप सोचते हैं, जो आपकी कल्पना में है, वो सारी चीजों को इकट्ठा करके वो अपनी एक अलग से स्क्रिप्ट तैयार करने लगता है। ये साहित्य की शक्ति है। थोड़ा सा और मूर्त हुआ क्योंकि साहित्य में तो अक्षर ही है। यही स्थिति लगभग लगभग चित्रकला की होती है। चित्रकला का भी जो प्रभाव होता है वो मूर्तिकला से कहीं ज्यादा अधिक होता है। इसके बाद आप आ जाइए, चलिए हम फिर से कला के दूसरे रूप में आते हैं, और वो है नृत्य, डांस या थिएटर, नाटक। अब आप देखिए कि जो नृत्य है, नृत्य साहित्य से थोड़ा सा और सूक्ष्म हो गया, क्योंकि साहित्य में अक्षर हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब नृत्य में पूरा का पूरा पैरों का संचालन है और गीत है या म्यूजिक है। गीत पर भी नृत्य हो सकते हैं और म्यूजिक पर भी नृत्य हो सकते हैं। आप देखते हैं जो भरतनाट्यम है, कथकली है, जो आपके सिविल सर्विस का सिलेबस में भी है, तो उसमें शब्द नहीं होते, म्यूजिक होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो नृत्य करने वाली हैं वो अपने हाव भाव से एक स्टोरी एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन वो हाव भाव से, वहां शब्द नहीं है। थिएटर में शब्द हैं, डायलॉग हैं, लेकिन नृत्य में डायलॉग नहीं है। फिर से गायब हो गए, अब वो ध्वनि भी गायब हो गए, वो डायलॉग गायब हो गए, वो शब्द गायब हो गए, अब सिर्फ म्यूजिक है। म्यूजिक और अधिक सूक्ष्म हो गया, इसका प्रभाव अधिक पड़ता है, नृत्य का प्रभाव और अधिक पड़ता है। इसके बाद लास्ट हम आ जाते हैं दोस्तों म्यूजिक। अब तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। डांस में तो आपको कुछ दिख रहा था कि एक नृत्य करने वाला या नृत्य करने वाली है, और वो अपने हाव भाव के जरिए एक स्टोरी बता रहा है, और आप उस स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका आनंद आप ले रहे हैं। लेकिन अब तो म्यूजिक ही म्यूजिक है। म्यूजिक कला का सूक्ष्मतम रूप हो गया, बिल्कुल छोटा से छोटा रूप, सूक्ष्मतम रूप। इसीलिए म्यूजिक का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव म्यूजिक का माना गया है। यहां तक कि म्यूजिक के माध्यम से तो आध्यात्म की सीमा सीढ़ियों तक पहुंचने की बात कही गई है। और हमारे यहां आपको मालूम है कि भजन कीर्तन को कितना अधिक महत्व दिया गया है। आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको मालूम ही हो कि था है कि वो तो कीर्तन के माध्यम से ही एकदम भगवत्ता को प्राप्त कर लेते थे, बिल्कुल इतने मगन हो जाते थे, इतने खो जाते थे कि वो उनकी बिल्कुल बेहोशी की हालत हो जाती थी। म्यूजिक में वो ताकत होती है। और म्यूजिक इन जितनी भी कलाओं के प्रभाव के बारे में मैंने अभी चर्चा की है, ये सब आपके अनुभव में है। ये बात अलग है कि आप अभी इसे इस रूप में न देख पाए हों, तो अब आप इसे इस रूप में देखेंगे, राइट। मेरे मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो बात करना चाह रहे थे इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में, और ये कहां से कलाओं के बारे में आ गए। मित्रों, उसका रीजन है, रीजन ये है कि सबसे पहले हमने बात की है फिजिकल एनर्जी। ये शरीर हमें दिखाई दे रहा है, इसकी सीमाएं हैं, इसकी अपनी लिमिटेशन है। ये एनर्जी है और बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हम आए हैं मेंटल एनर्जी पर, ब्रेन, दिमाग, विचार। नो डाउट बुद्धि नामक एक तत्व होता है, ब्रेन होता है, वो भी दिखाई देता है, लेकिन उस तरीके से दिखाई नहीं देता जैसे शरीर दिखाई देता है। शरीर का जिस तरह से आप इलाज कर सकते हैं, शरीर के साथ आप जिस तरह से इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप ब्रेन के साथ उस तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। वो शरीर से सूक्ष्म है, इसीलिए दिमाग की ताकत शरीर की ताकत से कई गुना ज्यादा अधिक है, कई गुना ज्यादा अधिक है। ये नहीं कि कोई दुगुना तिगुना पांच गुने की बात है, मेनी मेनी टाइम्स मोर। इसके बाद दोस्तों, थर्ड जो है वो इमोशनल एनर्जी है। अब ये जो इमोशनल एनर्जी है, जो इसकी ताकत है, ये मेंटल एनर्जी से भी ज्यादा है, क्योंकि उससे भी ज्यादा ये सूक्ष्म है। जो इमोशंस हैं ये उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, इसकी ताकत मेंटल एनर्जी से भी ज्यादा है। और फिर स्पिरिचुअल एनर्जी, इमोशंस को तो आप फील करते हैं, है ना, किसी से प्रेम हो गया तो हम इमोशंस फील करते हैं, गुस्सा आ गया तो वो भी एक इमोशन है, गुस्सा आ गया तो हम इमोशंस को फील करते हैं, जब मन खुश होता है तो वहां भी हम इमोशंस को फील करते हैं, किसी चीज को देख करके जब हमें थोड़ी सी विस्तृष्णा सी होने लगती है, एलर्जी सी होने लगती है, उसको भी हम फील करते हैं। तो ये सारे के सारे इमोशंस हैं, इनकी भी अपनी एनर्जी है। तो ये मेंटल से भी सूक्ष्म चीजें हो गई। और इसके बाद है लास्ट स्पिरिचुअल एनर्जी, जो हाईएस्ट लेवल की एनर्जी है। ये एनर्जी बियॉन्ड, आप कह लीजिए कि साइंस को उस रूप में ले तो बियॉन्ड साइंस है, जिसके लिए कि क्वांटम फिजिक्स की हम बात करते हैं साइंस है, लेकिन उसका एक अलग ही तरह का साइंस है जो अद्भुत है, विलक्षण है। मैं आगे चलकर के थोड़ी सी इनके डिटेल्स को बताऊंगा, लेकिन इसके माध्यम से मैं केवल आपको यह सिद्ध करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि जो एनर्जी के चारों लेवल्स हैं, जो चारों चैनल्स हैं, लेवल नहीं कहना चाहिए, चारों अलग अलग चैनल्स हैं, ये चारों चैनल्स जैसे जैसे हम फिजिकल से मेंटल, मेंटल से इमोशनल और इमोशनल से स्पिरिचुअल की तरफ चलते चले जाते हैं, इनकी ताकत बढ़ती चली जाती है, राइट फ्रेंड्स। अब आप देखें कि फिजिकल एनर्जी के लिए हम कुछ कर सकते हैं, मेंटल एनर्जी के लिए भी कुछ कर सकते हैं, इमोशनल एनर्जी के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन काफी कुछ हम करते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप होती है लेकिन उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि वस्तुतः ये होता क्या, मतलब इनके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ मुझे मेल भी मिले हैं जिसमें उन्होंने जानना चाहा है कि भाई ठीक है, एनर्जी की बात तो है, लेकिन हम इन्हें डेवलप करें कैसे, तो डेफिनेटली वो मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। तो मित्रों, मैं अब आता हूं इमोशनल एनर्जी पर, कि ये इमोशनल एनर्जी इनफैक्ट क्या है, जिसको हम इमोशंस कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इमोशनल एनर्जी पर बात करूं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा, और वो ये कि जो एनर्जी होती है, याद रखिए, जो ऊर्जा होती है, मैं बहुत पहले के एपिसोड में आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन यहां मैं इसको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि एनर्जी का रोल अपने आप में कुछ नहीं होता, अपने आप में एनर्जी कुछ भी नहीं करती, आपको देखना होगा कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये इस्तेमाल करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि एनर्जी उसके लिए क्या लेकर के आएगी, उसको क्या देगी या क्या उससे छीन करके ले जाएगी, वो क्या रचेगी और क्या विध्वंस कर देगी, ये एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है। अगर कोई बहुत ताकतवर है तो उस ताकत से वो कुछ भी कर सकता है, विध्वंस भी कर सकता है, जो हिटलर ने किया, और वो रच भी सकता है, जो बहुत से दूसरे शासकों ने किया, सम्राट अशोक ने किया, सम्राट अकबर ने किया, उन्होंने उसी शक्ति का, शासकीय शक्ति का इस्तेमाल, शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल अलग तरीके से किया, तो ये यूज के ऊपर है। तो ये जो इमोशनल एनर्जी है ये बेसिकली है क्या, क्योंकि इमोशनल एनर्जी से पहले मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है क्योंकि बहुत लोग इमोशनल एनर्जी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जिंदगी में उन्हें इसके बहुत दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और आपको मालूम होगा कि खासकर डेली ऑडियो गाइडेंस में मैंने बहुत डिटेल में खासकर इमोशंस और लॉजिक के बारे में बताने की कोशिश की है। जब तक ये दोनों एक दूसरे से मिलकर के गलबाहियां डाल करके काम नहीं करते तब तक सही मायने में चीजें होती नहीं है, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो सिविल सर्विस में है भी, इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी मैं आपसे बातें करूंगा। तो मित्रों, ये इमोशनल एनर्जी है क्या, कैसे काम करती है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप सब में इमोशंस हैं, आप अपने माता पिता को प्यार करते हैं, इमोशंस के चलते करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो नहीं भी करते, वो एक निगेटिव इमोशंस के कारण नहीं करते हैं, या कह लीजिए कि उनके अंदर, अगर हम बहुत सरल भाषा में कहें तो उनके अंदर वो इमोशंस नहीं है। आप अपने गांव को प्यार करते हैं, अपने शहर को प्यार करते हैं, अपने देश को प्यार करते हैं, अपने लोगों को प्यार करते हैं, अपने दोस्तों को प्यार करते हैं, आप उन्हें चाहते हैं और इतना चाहते हैं कि उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये इमोशंस हैं। दिस ऑल आर इमोशंस। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये इमोशंस कई डायरेक्शंस में हमारे सामने मौजूद रहते हैं और जैसे ही कोई स्थिति आती है उसके अनुकूल हमारे अंदर इमोशंस पैदा हो जाते हैं। जैसे आप देखें कि बड़ा सुंदर दृश्य आप देखते हैं तो मन में खुशी होने लगती है, एक खुशी का इमोशन हो गया। और जब कोई बहुत विभत्स दृश्य दिखाई देता है या कोई बहुत डरावना होता है तो आप डर जाते हैं, ये भय का इमोशन क्रिएट हो गया। जब आपको किसी बात पर गुस्सा आता है तो क्रोध का इमोशन हो गया। जब आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं आपको एक अलग तरीके की शांति मिलती है, वो शांति का अनुभव भी एक इमोशन है। तो मित्रों, इस तरीके से कई तरह के इमोशंस हमारे दिल और दिमाग में लगातार उठते रहते हैं, जिसे मैं कहता हूं जैसे कि ठीक झील में कोई तरंगे उठ रही हूं। आप देखें कि झील कितनी भी शांत क्यों ना हो, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो तरंगे उसमें उठेंगी ही। ठीक यही स्थिति हमारे मन और मस्तिष्क की होती है, इसमें लगातार तरंगों का उतार चढ़ाव होता रहता है, यही इसकी विशेषता है, या कह लीजिए कि यह इसका चरित्र ही है। ये कभी भी बिल्कुल एक जैसा स्थिर नहीं रह सकता, हमारा मन और मस्तिष्क बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक लिक्विड फॉर्म में है, इसका जो धरातल है वो पानी के धरातल की तरह है जो लगातार आंदोलित होता रहता है। ये जो इमोशंस हैं मित्रों, ये इमोशंस बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, बशर्ते कि आप इनका सही इस्तेमाल करना जाने। मैं यहां आपके सामने दो उदाहरण रखूंगा। पहला उदाहरण, चलिए हम देखते हैं कि आज के ही पेपर में मैंने पढ़ा है कि सचिन तेंदुलकर जिन्हें स्टेटमेंट दिया है कि खेल के मैदान में जब जन गण मन हम गाते हैं तो बड़ा गर्व का एहसास होता है। अब खेल के मैदान में जब हम जन मन गण गाते हैं तो बड़ा गर्व का एहसास होता है और मन खुशी से और साहस से और हिम्मत से उत्साह से भर उठता है, ये सब बातें उन्होंने कही है। अब अगर आप इसको एनालिसिस करें तो ये जन गण मन है क्या? नो डाउट हमारा राष्ट्रगान है, लेकिन एक गीत है। अगर हम इसको थोड़ा सा और हटा करके देखें तो एक गीत है, और भी बहुत से गीत हो सकते हैं, उसी तरह से राष्ट्रगीत भी, हमारा राष्ट्रगान भी एक गान हो सकता है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इसके साथ हमारे देश की पहचान कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई है कि ये अब सिंपल सा कोई सॉन्ग नहीं रह गया है, कोई नेशनल एंथम नहीं रह गया है, ये उससे हटकर कुछ और हो गया है। तो जब हम इसकी धुन सुनते हैं, धुन ही क्यों ना सुन ले, गीत शब्दों को छोड़िए, धुन ही क्यों ना सुन ले, तो अचानक अंदर कुछ कुछ होने लगता है। ये कुछ कुछ कौन कर रहा है? ये जो कुछ कुछ हो रहा है, ये कुछ कुछ कौन कर रहा है? ये कुछ कुछ हमारी वो भावनाएं कर रही हैं जो उस गीत से जुड़ी हुई हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता। इससे भी बहुत खूबसूरत गीत हो सकते हैं, साहित्य की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, भावार्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचनाकार की दृष्टि से, रिदम की दृष्टि से, सैकड़ों दृष्टियों से बहुत से गीत इससे बहुत बेहतर गीत हो सकते हैं, होते ही हैं। लेकिन क्या उन्हें सुनने के बाद हम सच में उस तरह की अनुभूति कर पाते हैं? सोच के देखिए, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर इन चीजों को इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। दोस्तों, इसको इन सब को सुनने के बाद प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको इंप्लीमेंट करके देखें। जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तब आप इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग भी कर पाएंगे, और सही बात तो यह कि तभी आप इन्हें सही रूप में समझ भी पाएंगे। आप इंप्लीमेंट कीजिए। इतने सारे गाने हैं फिल्मों के, चलिए हम बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। फिल्मों के इतने सारे गाने हैं, मान लीजिए कि कोई गाना आपको बेहद प्रिय है, आपका सर्वोत्तम गाना है, वो सबसे प्रिय गाना है, सर्वप्रिय गाना है, क्या वही गीत, वही गाना आपके दोस्त का भी सर्वप्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है? या चलिए उसका भी प्रिय है तो उसका जो गीत है क्या वो आपको प्रिय है? आप देखेंगे कि जितने भी लोगों से पूछिए वो सब अपने अपने ढंग से अपने अपने गानों के बारे में कहेंगे, नहीं मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ये पसंद है। ये जो पसंदगी है, ये पसंदगी क्या है, ये पसंदगी कहां से आई है? देखिए, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि मुझे तो ये पसंद है, बस इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, इसके वर्डिंग बहुत अच्छे हैं, इसको गाया बहुत अच्छे से गया है, इस तरह की बातें आप कहेंगे। यहां एक बात मैं और कहना चाहूंगा मित्रों, नंबर एक, एक तो होता है अस्थाई पसंद, टेम्परेरी लाइकिंग, अभी ये पसंद है, 3 महीने के बाद कोई दूसरा गाना आ गया तो वो पसंद आ गया, 15 दिन के बाद फिर कोई दूसरे म्यूजिक वाला गाना आ गया तो वो पसंद आ गया, ये एक टेम्परेरी लाइकिंग है, इसके आधार पर आप बहुत ज्यादा मूल्यांकन नहीं कर सकते। मैं तो स्थाई लाइकिंग की, परमानेंट लाइकिंग की बात करता हूं, जिसे जो आपके दिल और दिमाग में बस गया है, रच बस गया है, आप वही हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, सभी में अलग अलग क्यों है? इसलिए मित्रों, क्योंकि उस गीत में जो आपका सबसे प्रिय गीत है उसमें आप खुद को देखते हैं, वो आपके इमोशंस के साथ मैच करता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो गीत आपके लिए ही लिखा गया है, और कभी कभी तो ये भी लगता है कि मैंने ही लिखा है, और कभी कभी ये भी लगता है कि यार ये गीत तो मेरे ऊपर है, सारी बातें मेरी हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं लिख पाया, ऐसा भी लगता है। ये क्या है दोस्तों? ये इमोशन है, ये इमोशंस है। तो जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान में जन मन गण गाते हैं तो वो गीत नहीं गाते हैं, वो गीत कुछ और बन चुका होता है, वो गीत राष्ट्र की आराधना बन जाती है, या राष्ट्र की प्रार्थना बन जाती है, या राष्ट्र के लोगों से की गई प्रतिबद्धता हो जाती है, उनको दिया गया वचन हो जाती है, बन जाती है कि मैं अब इस मैदान में खेले गए खेल में आप सबसे वायदा करता हूं कि अपने राष्ट्र का नाम रोशन करूंगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली यह राष्ट्रगान एक प्रकार से कमिटमेंट टू द कंट्री बन जाता है। दोस्तों, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब आप देखिए कि कैसे एक सिंपल सा गीत कन्वर्ट होते होते क्या बन गया है, कन्वर्ट होते होते कमिटमेंट टू द कंट्री बन गया है, राष्ट्र के लिए किया गया एक वायदा बन गया है, राष्ट्र को दिया गया एक वचन बन गया है। यह सब कुछ बहुत सूक्ष्म तौर पर होता है, बहुत सूक्ष्म तौर पर होता है। दोस्तों, अक्सर आप खेलों के बारे में पढ़ते हैं, जब क्रिकेट के बारे में सुनते हैं, कि अक्सर यह देखा गया है कि जो टीम अपने देश के मैदान पर खेलती है उसको उसका फायदा मिलता है, यह माना जाता है कि उसको उससे बहुत फायदा मिलता है, और ज्यादातर ऐसी टीमें जीतती हैं, ज्यादातर ये पाया गया है, हमेशा तो नहीं लेकिन ज्यादातर पाया गया है। ठीक है, उसके लिए आप कह सकते हैं कि उनके अपने देश का एनवायरमेंट है, ये भी आप कह सकते हैं कि उस क्रिकेट के मैदान, उस मैदान में उनको ज्यादा खेलने का अभ्यास है तो उनके ज्यादा फेवर में है, वो सब चीजें तो हैं ही, है ना, ये एक साइंटिफिक या एनालिटिकल अप्रोच के तहत आप ये सब बातें कह सकते हैं, जो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। लेकिन इसमें मित्रों आपको ये भी कहना पड़ेगा कि चूंकि वो अपने मैदान में खेल रहे हैं, अपने देश में खेल रहे हैं, तो वहां वो अपने उस इमोशंस के साथ खेल रहे हैं कि हम अपने मैदान में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने ही घर में हार जाएं। तो यह चिंता कि कहीं हम अपने ही घर में न हार जाएं, यह इमोशन है और यह चिंता उनकी ताकत को बढ़ा देती है, उनकी एनर्जी को हाई लेवल पर ले जाती है। एक प्रश्न है मेरा फ्रेंड्स, और जो मैं अक्सर करता भी हूं, कि मान लीजिए कि आज विराट कोहली या महेंद्र धोनी जब क्रिकेट के मैदान में खेल रहे होते हैं या क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहां महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली खेल रहे हैं या हिंदुस्तान खेल रहा है? उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर? देखिए, मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूं कि उनमें वो बिल्कुल ही अपने आप को गायब ही कर देंगे कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब वो खेलते हैं तो किस रूप में खेलते हैं? वो अपने हार और जीत को, अपने टीम की हार और जीत को क्या महज अपनी टीम की हार और जीत के रूप में देखते हैं या कुछ और भी रूप में देखते हैं? आपका बिल्कुल सीधा सा उत्तर होगा कि नहीं, उनकी टीम, उनकी हार और जीत हिंदुस्तान की हार और जीत होती है। यानी कि वो अपने खेल को अगर हिंदुस्तान के खेल में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वो खुद को भी हिंदुस्तान में कन्वर्ट कर देते होंगे? मानसिक स्तर पर ऐसा होता है, इमोशन लेवल पर ऐसा होता है और बिना कुछ सोचे और बिना कुछ किए होता है, ये अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि जिंदगी इसी तरीके से काम करती है, जिंदगी इसी तरीके से काम करती है। और अगर वहां का खिलाड़ी विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी अगर अपने लिए खेलेंगे तो टीम हार जाएगी, टीम के लिए खेलेंगे तो टीम जीत जाएगी, यह माना जाता है, यह कहा जाता है, यह गाइड किया जाता है, सारे खिलाड़ियों को यह कहा जाता है कि टीम के लिए खेलो, जब तुम टीम के लिए खेलोगे तो पूरी टीम जीतेगी, और अपने अपने लिए खेलोगे तो वो टीम बनेगी ही नहीं, उसको हम टीम ही नहीं कह सकते, वो तो फिर एक इंडिविजुअल गेम हो गया। दोस्तों, ये है इमोशंस, पावर ऑफ इमोशंस, स्ट्रेंथ ऑफ इमोशंस, ये चैनल है। एक, चलिए मैं अब छोटा सा अंतिम एक उदाहरण देता हूं कि मित्रों, जो भी मेरे प्रिय श्रोता हैं, हो सकता है कि इसमें भी यंग बिल्कुल स्टूडेंट हों, कुछ ऐसे भी होंगे जो अधेड़ स्थिति पर पहुंच गए हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो अब लगभग लगभग वृद्धावस्था की करीब हैं, जो भी हों, लेकिन जो जिस स्थिति में भी हों, एक दौर तो जिंदगी में आता ही है जब हम सबके मन में प्यार की लहरें अपनी जो अपना जोर मारती हैं। ये नेचुरल है, इतना तो अनैतिक है, न अप्राकृतिक है, न अधार्मिक है, ये नेचुरल है। अब ये बात अलग है कि उसका कोई कैसे यूज करता है। तो प्रेम एक इमोशन है, प्रेम एक इमोशन है। अब आप देखें कि इसी प्रेम को लेकर के आपको अपने आसपास, समाज में, देश में, इतिहास में, कहानियों में अलग अलग तरीके से इसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास देवदास भी है, देवदास एक चरित्र है, एक नॉवेल शरद चंद का जो उपन्यास है, देवदास के नाम से ही उपन्यास है, उसमें देखिए तो वो जो देवदास है वो क्या कर रहा है प्रेम को लेकर के, अपने को नष्ट कर रहा है। उसने प्रेम की शक्ति को समझा ही नहीं है, उसने प्रेम को अपनी कमजोरी बना लिया और अंत में क्या होता है, शराब पी रहे हैं, इधर पड़े हैं, उधर पड़े हैं। ये क्या प्रेम का इस्तेमाल है, ये क्या प्रेम है? लेकिन आप फिर उसने कहा था कहानी पढ़िए, चंद्रधर शर्मा कुलेरी जी की कहानी, उसने कहा था, ये कहानी पढ़िए, मैं यहां कहानी आपको बताने नहीं जाऊंगा क्योंकि कहानी लंबी है और अगर संक्षिप्त में मैंने बताया तो फिर उसके जो जो रेशे हैं वो आपकी पकड़ में नहीं आएंगे। बहुत छोटी सी कहानी है, आपको मुश्किल से 20-25 मिनट लगेंगे, उस कहानी को पढ़ना चाहिए, कहानी हमारी जिंदगियों के प्रतिबिंब होते हैं। उसमें आप देखिए कि उसने कहा था, मैं उस नायक ने, लॉन्स नायक ने अपने छोटे से प्रेम जिसको उसने मन ही मन चाहा था, कितने बड़े उत्सर्ग में बदल दिया, कितने बड़े त्याग में बदल दिया, कितने बड़े प्रेम में बदल दिया, कितने उस प्रेम को कितनी बड़ी शक्ति में बदल दिया, कितनी उदात्त भावना तक ले गया, सबलाइम कर दिया उसी प्रेम की भावना को। तो प्रेम तो सबने, उसने भी किया, देवदास ने भी किया, लैला मजनू ने भी किया, श्री फरहाद ने भी किया, यहां भी उसने कहा था कि लांस नायक ने भी किया, सब कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उसकी उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। प्रेम के बारे में अक्सर मुझे जितनी भी ज्यादातर बातें जो सुनने को मिलती हैं वो कमजोरी की बातें सुनने को मिलती हैं कि साहब कोई पगला रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई निराशा से गिर गया है, किसी का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, किसी का मन काम में नहीं लग रहा है। ये क्या है, ये एनर्जी का गलत इस्तेमाल है। और सच पूछिए तो मुझे तो कभी कभी यह भी लगता है कि ये प्रेम ही नहीं है, ये कुछ और चीज है। अब वो क्या चीज हो सकती है उसके बारे में ढेर सारी बातें हो सकती हैं, उस तथ्य पर मैं नहीं जाता, लेकिन इनफैक्ट ये कम से कम वो प्रेम तो नहीं है जिसे हम एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही उदात्त और एक सकारात्मक प्रेम मानते हैं। क्योंकि प्रेम तो रचता है, प्रेम तो बनाता है, प्रेम तो बढ़ाता है, प्रेम तो शक्ति देता है। ये ऐसा इमोशन ही है, ये इमोशन से जुड़ा हुआ सर्वोत्तम एनर्जी का फॉर्म है जो प्रेम है। ये इमोशन से, जितने भी इमोशन से, जितने भी हमारी इमोशंस हैं, जितने भी उनसे एनर्जीज पैदा होती हैं, उसमें जो सर्वोत्तम एनर्जी है वो प्रेम होती है। यही कारण है आप देखिए कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक को पाने की बात कही जाती है। आप ईश्वर तक को प्रेम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पूरी की पूरी सूफी परंपरा इसी पर आधारित है, हमारी पूरी की पूरी भक्तिकाल की परंपरा इसी पर आधारित है। मीराबाई ने इसी बात को सिद्ध किया है। और अभी जो मैं सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा था, या जो मैं अभी महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की बात कर रहा था, ये क्या है? ये देश के प्रति प्रेम है, देश के लोगों के प्रति प्रेम है। और वही प्रेम तो उनसे इस तरह का कमिटमेंट दिला रहा है कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूं। तो अगर व्यक्ति के प्रति प्रेम है तो वो ऐसा कमिटमेंट क्यों नहीं करा सकता कि मैं कुछ भी कर सकता हूं? ये कुछ भी कर सकता हूं का मतलब ये नहीं कि मैं मर भी सकता हूं। कुछ भी कर सकता हूं का मतलब है कि मैं कुछ भी रच सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं। ये डिस्ट्रॉइंग एनर्जी नहीं है, ये क्रिएटिव एनर्जी है। और सही मायने में तो ये कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो क्रिएटिव एनर्जी की ही बात करते हैं, डिस्ट्रॉइंग एनर्जी की बात नहीं करते। उसका कोई अर्थ ही नहीं है, उससे तो हमें बचना है और उससे हमें दूर रहना है। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जी तो हमारे अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनके भी शक्ति को कमजोर करती हैं, उन्हें बिखेरती हैं, उन्हें नष्ट करती हैं, उन्हें प्रदूषित करती हैं, उनसे हमें बचना है। तो मित्रों, अभी मैंने आपसे इमोशनल एनर्जी के बारे में केवल बात की है, और चूंकि ये सभी लोगों के जीवन के साथ जुड़ी हुई है, जीवन के अलग अलग चरणों में ये अलग अलग रूप में दिखाई देती है, अलग अलग रूपों में काम करती है, इसीलिए मैंने इस एपिसोड को केवल इमोशनल एनर्जी तक सीमित रखा है, ताकि मैं अपनी बात को विस्तार से कहूं। अब नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही आज के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। आप इसे सुने, ठीक लगे तो बार बार सुने, दूसरों से भी सुनने को कहें। अगर आप ऐसा समझते हैं तो इसमें जो बातें बताई गई हैं अनुभव के स्तर पर उनसे गुजरने की भी कोशिश करें, और जहां भी आपको ठीक नहीं लगती हैं मुझे बताएं, मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। इससे पहले कि मैं इजाजत लूं, मेरा आप सबके प्रति बहुत बहुत स्नेह भरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।